نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسن انسانیت، سیرت نبی کے سلسلے میں ہم مدنی دور کر رہے ہیں، اور مدنی دور میں سے بھی ہم لوگ دیکھ چکے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کس طرح والہانہ طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، اور وہ لوگ جو پہلے سے وہاں موجود تھے انہوں نے آپ کو ویلکم کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد وہاں کے حالات کو اتنے خوبصورت طریقے سے ٹیکل کیا یا اس سے معاملہ کیا کہ بڑے بڑے مسائل جو پیدا ہو سکتے تھے وہ نہیں پیدا ہوئے. آج ہم شروع کریں گے پھر وہی کشمکش. پیچھے والا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام مباخات قائم کیا، اخوت کا رشتہ بنایا، اور ہمیں قیامت تک کے لیے یہ بات سکھا دی کہ جب کسی ایک جگہ کے مسلمان لٹے پٹے آئیں تو ان کو وہاں سیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، بجائے اس کے کہ ان کو بے عزت کیا جائے یا چند لوگوں پہ ڈال کر ہمیشہ کے لیے ان کو لفظ مہاجر دے دیا جائے، بلکہ ون آن ون بیس پہ سوسائٹی کے جو موجود لوگ ہیں ان کو اس میں نیکی کا موقع دیا جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ مواخات مدینہ کے بعد وہاں کیا حالات ہوئے. ٹاپک ہے پھر وہی کشمکش. کشمکش کیا ہوتی ہے؟ اس طرح آپ تھوڑا سا چیزوں کو چینج کرنا، ادھر سے ادھر ہونا. یہاں تاریخ و سیرت کے پورے سلسلہ واقعات کو پیش کرنا مقصود نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بک میں ہم ڈیٹیلز نہیں پڑھ رہے بلکہ خلاصے پڑھ رہے ہیں ایک ایک چیز کا، جو اس کا ایک کہہ لیجیے کہ نچوڑ پڑھ رہے ہیں، سیرت کا نچوڑ ہے. مجملن ہم نے یہ دکھانا چاہا ہے، مجملن کہتے ہیں آن دی ہول، جملہ کہتے ہیں ہول سیل کو. کیا دکھانا چاہے کہ تحریک اسلامی کی پود مکہ سے آ کر مدینہ میں کس طرح نصب ہوئی. پود کس کو کہتے ہیں؟ پودے کو، جیسے کہ کوئی پلانٹ کہہ لیجئے. اور کس طرح نئی کمپلین نکالنے لگتی ہے، ماحول کیا تھا، اور اب ایک نئی مؤثر طاقت کے آ جانے سے اس میں کس نہج پر نئی حرکات شروع ہو رہی تھی. سوئے ہوئے معاشرے کو جرس حق نے آ کر جگا دیا. جرس کس کو کہتے ہیں؟ گھنٹی کو. یعنی آپ اس خوبصورت الفاظ کو بھی نوٹ کیا کریں، اور جس کا ترجمہ نہ آتا اس کو بک پہ لکھ لیں. بک میں سے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. مطلب یہ کہ معاشرہ سو رہا تھا، حق کی گھنٹی بجی اور اٹھنے لگے لوگ. عمل کا ایک اسٹیج تیار ہو گیا تھا، اور اس پر ایک مثبت اور تعمیری طاقت اپنا کردار پیش کر رہی تھی. مثبت کردار کے سامنے آتے ہی تاریخی قانون کا یہ تقاضا تھا کہ کوئی نہ کوئی منفی کردار بھی نمودار ہو. تعمیری مہم کے مقابل میں مشیت کا ضابطہ لازماً ایک تحریبی قوت کو حرکت میں لانا چاہتا تھا. حق اگر میدان میں آ گیا ہو تو پھر ناگزیر تھا کہ باطل کے محاذ پر بھی گرما گرمی پیدا ہو جائے. کیا مطلب ہے ان آخری جملوں کا؟ کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں حق آئے گا نا تو باطل لوگ حرکت میں آئیں گے. لوگ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، کوئی نہیں کرتا، جو ہی کوئی حق بات کرنے کے لیے سر اٹھائے گا تو باطل سوچے بھی کھلنے لگیں گی. یہ فطری سی بات ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جب آدم دنیا میں بھیجے گئے تو ابلیس بھی ساتھ ہی آیا. تو ڈے ون سے حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، اور یہ چلتی ہی رہے گی. اور اس کا مقصد مسلمانوں کو یا حق والوں کو بہکانا یا گمراہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اور زیادہ اپنے مقصد پر پکا کرنا ہوتا ہے. عاشقانِ جانباز، یعنی جانباز محبت میں جو حق سے جو محبت کرتے ہیں، اگرچہ کوچے جانا کی طرف اقدام کرے تو پھر رقیب روح سیاہ کی ضرورت بھی پیدا ہو جاتی ہے. مدینہ میں جس نئے معاشرے کی اٹھان ہو رہی تھی اسے دیکھ دیکھ کر شیطان بری طرح تل ملا رہا تھا. نوٹ کریے گا، جہاں بھی حق پھیلے گا نا تو شیطان کو غصہ آ رہا ہوگا. اسی لیے بعض جگہ پھر فتنے بھی اٹھتے ہیں. وہ اپنے کچھ فداکاروں اور جان نثار میدان میں لانا چاہتا تھا، چنانچہ اسے اعلی کار مل گئے تھے اور وہ ان کو اٹھا کر اسٹیج پر لے آیا. تحریک کو پہلے سابقہ ابراہیم علیہ السلام کے نام لیواؤں سے تھا، اب اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے جانشین چوغا ہے تقدس پہنے اور کتاب اللہ بغل میں لیے خرامہ خرامہ دکھائی دیے. کیا پتہ چلا؟ مکہ میں دشمن کون تھے؟ مشرکین. مشرکین کا تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام سے. مدینہ میں آ کر کس سے بھی اور معاملہ پڑ گیا؟ جیوس سے. وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے نسبت جوڑتے تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ مکہ میں صرف ایک گروہ دشمن تھا، مدینہ میں آ کر ایک اور کا اضافہ ہو گیا. तहरीक इस्लामी के ड्रामे में पहले जो पार्ट मुतवल्लियाने काबा ने अदा किया था, अब मदीना में वही पार्ट फर्जंदाने बैतुल मक़दस ने अपने जिम्मे ले लिया। क्लियर है? यानी मक्का में नबी सल्लम के दुश्मन कौन थे जो खुद को काबा के मुतवल्ली कहते थे, और वो कौन थे? मुशरिकीन मक्का। मदीना में आकर नबी सल्लम की दुश्मनी किसने की, जिनकी निस्बत या वो खुद अपनी निस्बत बैतुल मक़दस से जोड़ते थे? मुराद बनी इसराइली हैं। कहने का मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कभी भी चैलेंजेस से खाली नहीं हुई। अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा दिल देकर भेजा था कि जहाँ हर दुश्मन की दुश्मनी छुप जाए। अकलमंद इंसान ये नहीं होता कि वो अपने आप को छुपा कर बैठ जाए और कुछ करे ही ना कि लोग मेरी दुश्मनी करें। अकलमंद कौन होता है कि वो भरपूर तरीके से हक का इजहार करता है और उसके बाद फिर आने वाली रुकावटों को और दुश्मनियों को अल्लाह की मदद से दूर करता है। यहूद का तारीखी मुकाम और पाठ क्या था, बहुत सेंसिटिव हिस्सा है। तो आइए देखते हैं कि यहूद का क्या किरदार था नबी सल्लम के मदनी दौर में। तारीख इस्लाम और जाहिलियत की ये बड़ी अजीब ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी को क्या कहते हैं उर्दू में जी? सानेहा कह सकते हैं जी। तारीख इस्लाम और जाहिलियत का ये अजीब सानेहा है कि दीन हक की मुजाहमत करने की खिदमत सबसे बढ़कर जोश ईमानी के साथ हमेशा अहले मजहब ही ने सर अंजाम दी। ये नोट कीजिएगा, दीन की मुखालफत दुनियादार नहीं करते, वो खुश होते हैं कि चलो कुछ तो दीन मिलेगा। मुखालफत करते हैं दूसरे दीनदार, उनको न जाने क्यों ये लगने लगता है कि अब हमारे लोग उधर चले जाएंगे, हमारा झंडा नीचा हो जाएगा, इनका ऊंचा होगा। हालांकि झंडा हक का ही ऊंचा होता है, लोगों के नामों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां भी उन्होंने नबी सल्लम के साथ दुश्मनी की। अहले मजहब जिनको दीन हक की दावत की पहली आवाज सुनते ही अव्वलीन सफों में जाकर खड़ा होना चाहिए, हमेशा वही अव्वलुम काफिरुम बिही बनते रहे। कहीं पढ़ी है आपने ये बात? वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, पढ़ चुके हैं आप ये आयत, कि इसके साथ पहले ही काफिर तुम ना बन जाओ इल्ला माशाल्लाह। अहले मजहब इब्तदा में मजहब के खादिम और अलम बरदार होते हैं। कभी आपने भी दीन का काम शुरू किया हो ना, तो इब्तदा में बड़े सच्चे जज्बे होते हैं, फिर क्या होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इनका एक मर्तबा पैदा हो जाता है, यानी एक शान हो जाती है, थोड़ी तरक्की कामयाबी आने लगती है, कुछ नाम बन जाता है, शोहरत मिल जाती है, और इनके कुछ मुफाद यानी फ़ायदे मजहब से वाबस्ता हो जाते हैं, तो फिर वो मजहब को अपना ताबेदार बना लेते हैं। हालांकि क्या होना चाहिए था, खुद को मजहब का ताबेदार बनाया जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता मजहब के नाम पर अपने कुछ मुस्तकिल हकूक पैदा कर लेते हैं। यानी वो ये नहीं कहते कि हम अमल नहीं कर रहे, वो कहते नहीं हमें कुछ हकूक चाहिए, और हकूक क्या है कि फलां फलां बात पे हम अमल ना करें। यानी वो दीन के कुछ अहकाम से खुद को मुबर्रा कर लेते हैं और छुट्टी ले लेते हैं कि हम इन बातों पर अमल नहीं कर सकते, इसलिए आप हमें इस पर कुछ ना कहें। पैरवान मजहब से वो कुछ अपने तबकाती मुतालबात मनवा लेते हैं और कुछ एजाजात इनके लिए मखसूस हो जाते हैं। मजहब अपने पैरवों के दौरे जवाल में हमेशा इन्हीं मराहिल से दो चार होता रहा। जरा गौर कीजिए, इस्लाम को हमेशा नुकसान इस्लाम का नाम लेने वालों ने दिया। जो लोग दुनिया के झंझटों में पड़े होते हैं वो कहते हैं इट्स ओके, अब क्या हो सकता है, फिर हम इससे ज्यादा और क्या करें। लेकिन जो पहले से दीन के साथ जुड़े होते हैं ना, उनके लिए हक को बर्दाश्त करना एक कड़वी गोली निकलने के बराबर होता है। यहां भी कुछ इसी किस्म की बात दिखती है। और याद रखिएगा, आज की तफसीर में भी यही बात थी बेसिकली, कि जब कोई भी दीन का काम या दीन की असल शुरू होती है ना, तो लोगों में बहुत सच्चे जज्बे होते हैं, इखलास भी होता है, तड़प भी होती है, बेलॉस काम करना चाहते हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता अगर उनको मुसलसल हक की बात ना सुनने को मिले, तो वो फिर एक सियासत का शिकार हो जाता है, फिर वहां चंद लोगों की हुक्मरानी हो जाती है, फिर पसंद नापसंद की बातें रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम पे मुसल्लत की जाती हैं। यहूद को ये बात पसंद नहीं थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में उनकी जमी जमाई कुर्सी को कुछ कमजोर करें और उनको वहां से जाना पड़े। यही बात यहां बता दी। यहां पहुंचकर मजहब एक अच्छे नफा बख्श कारोबार की सतह पर आ जाता है और वो एक मौरूसी जागीर बनता है। यहां पहुंचकर वाज माले तिजारत बन जाते हैं, यानी दरसों में वाजों में जो तकरीरें की जाती हैं असल में वो माले तिजारत होती हैं, अपने फायदे लेने के लिए। इल्म जरिए माश ठहरता है। यानी इल्म हासिल करो ताकि फिर उससे पैसे कमा सको। फतवे मताए बाजार बनकर अपना एक मार्केट रेट पैदा कर लेते हैं, कितने का फतवा चाहिए, कितने की माफी चाहिए। दीनी मनासिब रूहानी क़ियादत और इक्तदार का जीना करार पाते हैं, यानी जितना दीन में किसी को बड़ा मनसब मिलता जाता है वो लोगों में पीर मुर्शद और फलां नाम, यानी उसको एक किस्म का टाइटल पर टाइटल मिलते जाते हैं। इस मुकाम पर जब एक बार अहले मजहब आ पहुंचते हैं तो फिर इनका कारोबारी जहन हर मामले में ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारा मुफाद महफूज रहता है या नहीं। हालांकि क्या सोच होनी चाहिए, कि हमारा दीन महफूज रहता है कि नहीं। यानी जब दीनदारों को दीन आखरत की बजाय दुनिया के फायदे देने वाला बन जाए तो याद रखिए जवाल की अलामत है। और हमारा मनसब और हमारी पोजीशन किसी और तरफ तो मुंतकिल नहीं हो जाती, यानी उनको गम ये लगा रहता है हमें इस कुर्सी से ना हटा दिया जाए, हमारी पोस्ट कम ना कर दी जाए, हमें ऑनर दी जाए, हमें ओहदा दिया जाए, ये दिया जाए। और कारोबारी जहन जब इन औसाफ के साथ दायरे मजहब में आ घुसता है तो अहले मजहब किसी की तरफ से इख्तलाफ गवारा नहीं कर सकते और ना किसी बड़े मकसद के लिए दूसरों के साथ तआवुन कर सकते हैं। यानी फिर ऐसे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होते, जहां मुफादात आएंगे वहां टीम वर्क नहीं होगा, वहां ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, वहां जिसकी लाठी उसकी बहस है, हर बंदा रूल तोड़ने वाला होगा, रूल मनाने वाले बहुत थोड़े होंगे। आप पढ़ लीजिए, देखिए ये सीरत आपके मेरे लिए एक लाहे अमल भी है। जिंदगी में जब भी कहीं अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है तो आप सीरत पढ़े बगैर ना शुरू करें, आपको सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी। क्या आज आपको लगता है दीन का काम कहीं नहीं हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा होता है, मस्जिदें भी ज़्यादा, मदरसे भी ज़्यादा, कुरान के नुस्खे भी ज़्यादा, सीडीज, ऑडियोज, लिंक्स, एप्स, वेबसाइट्स, करोड़ों की तादाद में आप लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। आप ज़रा सा टैली करें, इंजॉय करें। नबी के दौर में क्या था मीडियम? कोई बात कहनी होती तो कोहे सफ़ा पे चले जाते और ऐसे हवा में कुछ कपड़े लहराते तो लोग इधर उधर से जमा होते कि कोई ख़ास बात है जो इन्होंने बतानी है। सुन चुके हैं आप मक्की दौर में। फिर लोग करीब आते तो आप उनको बताते कोई भी जंग लग रही है, दुश्मन आ रहा है, कुछ हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पे तो चढ़े लेकिन आपने कपड़े नहीं उतारे। नज़ीर कहते थे ऐसे शख्स को, उसके उसको खबर होती थी। तो अल्लाह के नबी को वहां जाता देख कर लोग जमा हो गए, सारे जमा हो गए तो आपने कहा कि अगर तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फौज आएगी तो मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे, हालांकि नामुमकिन था। मानेंगे क्यों? क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। ठीक है, तो फिर मैं अगर तुम्हें ये कहूँ कि एक रब है बाकी सब झूठे हैं, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, इस पे फिर झगड़ा शुरू हो गया। नबी सल्लम के जरिए अबलाग, मीडिया या आप कह लीजिए प्लेटफॉर्म्स कितने को थे, ये जुबान थी। फिर दो चार लोग हो गए, यहाँ तक भी वक्त आया कि नबी सल्लम अगर सफ़ा पहाड़ी पर बात करते तो थोड़ी दूर खड़ा होकर एक सहाबी वो दूर के लोगों को वो बात बताता, फिर वहाँ से थोड़ी दूर जाती। आज क्या हालात है मुसलमानों के? एक क्लिक पे लाखों करोड़ों लोगों तक आप पैगाम पहुंचा सकते हैं, एक कुरान की आयत, एक हदीस, एक अच्छी बात और एक बुरी भी। तो फिर आज तो इस्लाम जंगल की आग की तरह फैलना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं फैल रहा? उस तरह नहीं फैल रहा जितना फैलना चाहिए, इसलिए कि दीन फैलाने वाले सही मनहज पे नहीं है। उनके अंदर इतने बीच में रोड़े हैं, इतनी इख्तलाफी चीज़ें हैं, वो आपस में लड़ लें तो ही ये बहुत है, दुश्मनों से लड़ने की बात तो बाद में आएगी। यही बात बताई जा रही है कि जब दीन में कारोबार शामिल हो जाता है, कारोबार पैसे रुपए का ही नहीं होता, ओहदों का भी होता है, इज्जत का, टाइटल का। मस्जिदें टूटती देखी गई हैं, वल्लाही मैंने अपने गुनाहगार कानों से और अपनी आंखों से वो जगह देखी है कि कल तक वो एक मस्जिद थी और आप अगले दिन जाते हैं तो पता चलता है आज फजर के करीब ही मस्जिद के बीच में कुछ लोगों ने एक बाड़ लगाई, अभी आधी मस्जिद आपकी आधी हमारी। ये मेरे अपने कानों की बातें हैं। एक मस्जिद दो धड़ों में ढरती है। जुम्मे की नमाज पे लोग आए और परेशान हैं, किधर हुआ, क्या हुआ, किधर जाएं? वो मैनेजमेंट जिनकी थी वो कहते हैं हम इधर हैं, असल में जो बिल्डिंग थी उनकी उधर है। दो धड़े बन गए, एक जगह दो ऐसे जुड़वा मस्जिदें हैं दुनिया की, इस वक्त मुल्कों में मैं उन दोनों मस्जिदों में जा चुकी हूँ, ऐसे जुड़ी हुई है, एक डोर इधर है तो एक इधर है। और इस तरह भी ये तो आपके मुल्क में भी है, इधर एक फ्लोर में एक मस्जिद है ना, फोर फ्लोर है शायद बिल्डिंग या तीन है, इनमें से आप में से भी कुछ को पता है, तो एक एक फ्लोर पे मस्जिद है तो दूसरी दूसरे पे है, लिटरली मस्जिद है। लोगों को समझ नहीं आता हम जाएं किधर। आपके इस छोटे से शहर में भी ऐसी जगह है जहां 20-20 मील तक मस्जिद कोई नहीं, वहां कोई नहीं जाता, सबको जाके ग्रीनलैंड में मस्जिद क्यों बनानी है, हमारी मस्जिद इधर बन जाए, हमारे गांव की बन जाए, हमारे मसलक की बन जाए, ये मदीना में आपको मसले पेश आए थे। बस यहाँ आप कह लीजिए कि सारे कहते खुद को मुसलमान ही हैं, चाहे कोई एक फिरके से या एक मसलक से या एक जमात से जुड़े, मदीना वाले साफ कहते थे हम यहूदी हैं। नबी सल्लम के बिल्कुल वन ऑन वन बेस्ड हरीफ मदीना के ये होते हैं। जैसे आज अगर हक की बात करने निकलें तो आपके मुकाबले पे कोई दूसरे फिरके वाला आ जाए, जो आज तक लोगों को फिरका फिरका ही सिखाता रहा, वो कहेगा ये बता नहीं क्या नया काम लेकर आ गए, बस पकड़ो इनको बदनाम करो। तो याद रखिए, ऐसे हालात में दीन का काम करना सिर्फ हक की बुनियाद पे होता है, वरना बंदा कहता है मेरी बला से, मेरा कौन सा ये जाती काम है जो मैंने इन कामों को लेना है। आप एक अच्छी बात करते हैं, 10 आपके खिलाफ बातें बाहर लोगों को सुनाई जाती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने हर लिहाज से तकलीफ देने की कोशिश की थी, हर लिहाज से आपको परेशान किया गया, और फिर मानने को तैयार नहीं थे। और मकसद नहीं बड़ा होता ऐसे लोगों का। आज सिर्फ इस नॉर्वे की हम बात करते हैं, छोटा सा बेबी है, मुझे तो ओस्लो एक बेबी लगता है। अगर मेरा हेले आपको 2 घंटे कोई दे तो आप एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं कि नहीं? आप इधर से निकले एयरपोर्ट वाली साइड से पीछे लेके, आप इधर ग्रोनलैंड से आगे चले जाएं, आप ईस्ट वेस्ट 4 सिमतें ले लें, मेरा हेले 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बनती। शायद पूरे शहर का अगर आप राउंड ट्रिप बना लें तो 3 घंटे लग जाएंगे, दैट्स इट। क्या है ये, बेबी है। कितना आसान है यहाँ दीन फैलाना, और जितने यहाँ मुस्लिम हैं माशाल्लाह। और अगर हमने अपना दीन हक के साथ सच्चाइयों के साथ पेश किया होता तो क्या ये बेचारे जो इस शहर में भोले से लोग हैं ये महरूम रहते? ये हमारी आपस की लड़ाइयों की वजह से आज तक इस्लाम पे नहीं आए। आपके इस शहर में वो जगह आज भी मौजूद है, मुझे तो लोगों ने सुनाया, मैं तो तब नहीं थी, कि जो आपकी इस गवर्नमेंट ने ऑफर की थी कि आप इधर इस्लामी सेंटर बना लें, और सऊदीया से किसी कंपनी ने या किन्होंने कहा कि हम पैसा लगाएंगे, शर्त एक ही थी कि हम बनाएंगे तो इसमें एक ही अथॉरिटी होगी, हमारे अपने मस्जिदों वाले नहीं मिले। और आज वहां क्या बना हुआ है? शायद ओपरा हाउस, वहां मस्जिद हो सकती थी, वहां आज लोगों को तमाशा दिखाने वाली जगह बनी हुई है ना। ये मुसलमानों का अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना है, छोटी छोटी टोलियों में बंटना पसंद करते हैं क्योंकि नाम बड़ा, मैंने ये किया, मेरा जगह मेरे नाम पे, मैं, और वो सामने कब्रिस्तान है, सारी मैं वहां जाके गिर जाती है। तो याद रखिए कि नबी सल्लम के असाब शिकन हालात थे जो आपने उसमें अल्लाह की मदद से मदीना में जमाव पैदा किया। फिर आगे है कि अपने अंदर किसी कमजोरी या गलती को मानने और उसकी इसलाह करने पर तैयार ही नहीं होते। आप कहते हैं सबको बुला लो, बुला ले, कोई अपनी कमजोरी और गलती नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मेरी इसलाह की कोई जरूरत नहीं। और क्यादत व असर की कुर्सी छोड़कर किसी दूसरे की दावत पर अदाए फर्ज नहीं कर सकते। 4 मस्जिदों को जब एक करेंगे तो 3 कायद, 3 इमाम, 3 लीडर, 3 स्तीरे के मेंबर अलग होंगे ना, वो 3 किधर जाएं? ये मसला है। जितनी मस्जिदें जितने इदारे उतने लीडर, और जब सबको एक कर देंगे तो बाकी लीडरों को फिर बेचारों को मातूब बनना पड़ेगा ना, ये नहीं बर्दाश्त होता। हम कहते हैं छोटे रहे लेकिन अपने हाथ में कंट्रोल तो रहे। ठीक यही मुकाम था जिसकी आखिरी सरहद पर यहूद आ पहुंचे थे। वो हरगिज़ नहीं मान सकते थे कि हक इनके गिरोही दायरे के बाहर भी पाया जाता है। जुमला नोट करें, कल यहूद ये नहीं मानते थे कि हमारी यहूदियत के गिरोह से बाहर भी किसी के पास हक है, क्या आज मुसलमानों के चारों पांचों फिरके बड़े बड़े वो ये बात मानते हैं? वो कहते हैं हक हमारे पास। आप सुनियों के पास जाएं वो कहेंगे हम हक पे, आप ब्रेलवियों के पास जाएं वो कहेंगे हम हक पे, आप किसी देवबंदी के पास जाएं वो कहेंगे हम हक पे। आप जितने नाम जानते हैं, 10-12 नाम तो आपको भी आते ही होंगे, हर एक से जाके पूछे वो कहेंगे बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गए हो, हम ठीक हैं बाकी सारे गलत हैं। वो नहीं मान सकते थे कि इनके पीछे लगकर चले बगैर भी कोई राहयाब हो सकता है। वो नहीं मान सकते थे कि रहनुमाई का मनसब किसी दूसरे को भी मिल सकता है, यानी हिदायत हक सब कुछ। ये आपके कल के सबक में भी आ रही हैं बातें, अल्लाह ने माजी की कौमों के किस्से वहां बयान किए, तो सीरत भी तो हमें यही सब कुछ सिखा रही है ना। तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि हम अपना असल पहचाने, अपने आप को देखें, हम कहाँ खड़े हैं, हमें अल्लाह ताला ने क्या मौका दिया। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें और भी पढ़ेंगे, आज के लिए इतने काफ़ी है क्योंकि हमारा वक्त पूरा हुआ। खुलासा क्या है कि अगर मदीना में ये गिरोह जिनका तस्करा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लेते तो इस्लाम का पौधा ज़्यादा जल्दी पनपता। 10 साल में नबी सल्लम ने जो कामयाबियाँ हासिल की, वो शायद 2 साल में आ जाती। और अगर ये ग्रोह नबी सल्लम का साथ देता तो वल्लाह ही ना उहद होनी थी, बदर की मैं बात नहीं करती, उसकी रीजंस यहाँ नहीं थी, ना उहद होनी थी और उहद से लेकर तबूक तक एक जंग भी नहीं होनी थी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। इसलिए कि इस गिरोह ने साथ नहीं दिया। अगर हक किसी सोसाइटी में आए और लोग उसको न्यूबॉर्न बेबी की तरह लें और उसके लाड देखें और उसको पकड़ें कि शुक्र है हक आया, हक का बच्चा ऐसे पलता फूलता है कि पूरे मुआशरे में सेहत नजर आती है उसकी, लेकिन अंदर के तासुब और इजारादारियाँ और नस्बतें और फिर अपने आप को हक पे कहना, दूसरे को बुरा कहना, क्या आज उम्मत मुस्लिमा इस मुकाम पे नहीं खड़ी? हम इतने क्यों हैं और इतने होकर भी हम कमज़ोर क्यों हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में 1 लाख के करीब सहाबा जमा हो गए थे, क्या नस्बतें थी उनकी, क्या गिरोह थे उनके, क्या फ़िरका था उनका, क्या मसलक था उनका। एक छोटी सी मुझे किसी ने भेजी जिसमें बड़ा खूबसूरत यानी अंदाज ये था कि जैसे वो आपसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं और उसमें यानी बात कहने का मकसद क्या था कि सुनने में ऐसे लग रहा है कि अच्छा कोई हदीस का रेफरेंस पूछा जा रहा है, लेकिन नतीजा उसे जो निकाला गया था वो यही था कि सहाबे कराम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए थे। वो हकीकत में अल्लाह के नबी की बात पे लब्बाई कहते थे। आप कहते हैं नबी के सामने तो सब नहीं करना था, बाद में देख लीजिए, अबू बकर के दौर में देखिए, उमर को देख लीजिए, हर दौर में आपको सहाबा की बेलौस सच्चाई दिखेगी। और अगर उन्होंने नबी सल्लम का साथ भी दिया था तो हक की बुनियाद पे दिया था, अपने नामों के लिए नहीं दिया था। लेकिन आज हम छोटे छोटे गिरोहों और टुकड़ों में बट गए, हमने उम्मत को परेशान किया हुआ है। मुझे तो आम लोगों पर तरस आता है, जाएं तो किधर जाएं, जिसके पास चले जाएं बस उनको लगता है कि ये ठीक है और दूसरा बंदा दूसरी तरफ चल पड़ा। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी चीज़ों से बचा के रखे और हम अपनी फिक्र करें कि हम आज के दौर में क्या कर सकते हैं और किस तरह से इसको चीज़ को करते हैं। इंशाल्लाह आगे इसी से अगली नशिस्त में हम शुरू करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।